अब इसके बाद वो आयत है जिसको आप कह सकते हैं कि अल्लाह की बेपनाह कुव्वत और ताकत का इजहार। शाह को गदा बना दे या गदा को शाह बना दे, यानी फकीर को बादशाह या बादशाह को फकीर बना दे, और तमाम इख्तियारात का मालिक वही है। पढ़ते हैं इसको और फिर इंशाल्लाह इस पे थोड़ा सा गौर व फिक्र करेंगे बाद में। आयत नंबर 26, कुलिल्लाहुम्मा, कह दीजिए अल्लाह। कुल कहकर बात कही कि अल्लाह की जरूरत नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ये बात हम तक पहुंचाई गई कि आप कह दीजिए। क्या कह दीजिए? अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। आप देखिए कि ये अंदाज भी बड़ा खूबसूरत अंदाज होता है कि जिसमें अल्लाह ताला को, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना ए अल्लाह, तो ए की जगह पे अल्लाहुम्मा आ जाता है अरबी जुबान में। पहले भी ये बात आपको बताई गई है, इसलिए फिक्र की बात नहीं है अगर आप ना लिखें तो। दूसरी बात है कि कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की, बादशाही का मालिक, यानी बादशाह किसका? दुनिया का नहीं, बादशाही का भी बादशाह। हमारे यहां एक लफ्ज बोलते कहते हैं बादशाहों का भी बादशाह, क्या मतलब होता है? सबसे बड़ा। तो अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तू तिल मुल्क मन तशा, अल्लाह सुभान तआला कौन है जो बादशाहियों के फिर आगे बादशाह है, यानी अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा कुदरत ताकत और उसके गलबे को जाहिर किया जा रहा है इन आयतों में कि अल्लाह की जात बंदे के साथ कितना गहरा ताल्लुक रखती है। फरमाया कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तू तिल मुल्क मन तशा, तू हुकूमत और इख्तियार देता है जिसको चाहता है, वतनजुल मुल्क मिम्मन तशा, और तू छीन लेता है सल्तनत जिससे चाहता है। तंजीव क्या है? खींचना, नजा। नजा का वक्त वो होता है जब जिस्म से रूह खींची जाती है। तनाजा कहते हैं झगड़े को, खींचा तानी, मैं कहती हूँ मेरी, आप कहती हैं आपकी है। अल्लाह की सिफत, बादशाही देता और छीनता, वह तो इज्जो मन तशा, और तू इज्जत देता है जिसको चाहता है, वह तो जिल्लु मन तशा, और तू जलील करता है जिसको चाहता है। बियदिकल खैर, तेरे ही हाथ में खैर है। यहाँ देखिए बियदिकल खैर को अगर दूसरी तरफ लिखे ना तो होना क्या चाहिए था? अल खैरु बियदिक, खैर तेरे हाथ में, खबर की तकदीम है, या खबर दी गई है ना, तो बियदि का पहले कहकर खैर बाद में करके अल्लाह सुब्हान तआला ने इसमें और ज्यादा वुसअत डाल दी। अगर ये लफ्ज आता ना अल खैरु बियदिक तो बड़ा सिंपल सा तर्जमा था, खैर तेरे हाथ में। ठीक है, उर्दू में भी पढ़े ना, खैर तेरे हाथ में, और बियदिकल खैर कहकर तेरे हाथ में खैर है, तो तेरे हाथ पे एम्फेसाइज हो रहा है ना कि किसी ने एक चीज पकड़ी हुई है, मतलब यह कि तेरे से और कोई देने वाला नहीं। बियदिकल खैर, सारी खैर तेरे हाथ में है। अच्छा, आगे कुछ नहीं कहा, ये नहीं कहा कि शर भी तेरे हाथ में, हालांकि खैर और शर का मालिक अल्लाह, राइट? तो यहां क्यों नहीं शर की बात आई? क्योंकि शर बंदे के अपने आमाल के साथ होते हैं। कुल्ला इंसान इन अल्जमनाहु तायरहु फी उनुके, इंसान के ऊपर जो मुसीबत तकलीफ परेशानी आती है वो उसके अपने आमाल, उसके अपने करतूतों की वजह से होती है, इसलिए यहां शर की बात नहीं की गई। बियदिकल खैर, हालांकि अगर आप मजमून समझे और हकीकत भी यही है तो यह आयत पता कैसे होनी चाहिए थी? बियदिकल खैरु वश्शरु, क्योंकि हमें जो शर पहुंचता है वो भी अल्लाह के हुक्म से ही पहुंचता है, पर शर में आने में, तकलीफ पहुंचने में हमारा अपना कसूर होता है, वो अल्लाह ताला बयान करते हैं। और हकीकत है कि अल्लाह सुभान ताला के हाथ में सब कुछ है। एक और मतलब भी है यहाँ शर ना लिखने का, कोई आप में से पिछले हिस्से में जो पढ़ी हुई बातें उसका मतलब से बता सकता है? सवाल समझे मेरा? यहाँ सिर्फ खैर की बात है, शर की नहीं। क्यों? हालांकि शर भी अल्लाह के पास होता है। तो एक वजह मैंने बता दी ऑलरेडी कि शर हमारे आमाल की सजा होती है। एक और वजह भी है, सूरह बकरा 216 में पढ़ चुके हैं, चले तलाक और निकाह के टॉपिक से पहले, बिल्कुल उसके शुरू की से कि मैं नहीं याद आया, आसान तक रहु शयन व हुआ खैरुल लकुम, आसान तो हिब्बु शयन व हुआ शरुल लकुम। असल में दुनिया में कोई चीज शर होती नहीं है, हर शर में खैर छुपी होती है। हम किसी चीज को शर समझ रहे होते हैं लेकिन वो खैर हो जाती है, और हम किसी चीज को खैर समझते हैं तो वो शर हो जाती है। कुछ इसी किस्म की बात है, और हकीकत है कि जिंदगी में ऐसे ही होता है। ऐसे ही एक वाकया कहीं सुन रही थी कि एक बादशाह था, तो उसका जो वजीर था उसकी आदत थी कि हर बात पे कहता था जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ वो बहुत खूब हुआ। बादशाह जो था उसके हाथ में चोट लग गई, उंगली पे चोट पड़ गई। बादशाह ने वजीर से कहा कि ये देखो मेरे चोट लगी। कहने लगा जो हुआ खूब हुआ, इसमें खैर है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आ गया कि मुझे चोट लगी और तू खुश हो रहा है। बादशाह ने इसको पकड़कर जेल में डाल दिया। इतने में एक काफला कहीं जा रहा था, इनका मजहबी त्योहार था या क्या था, बादशाह उनके साथ कहीं चला गया। अब वहां जब गए तो उधर कोई ऐसा मामला था कि वो किसी एक शख्स को पकड़ते थे और दरिया में डालते थे, एक किस्म की कुर्बानी देते थे अपने बुत के नाम पे। बादशाह का नाम निकला। जब डालने लगे तो उन्होंने देखा कि बादशाह के हाथ में तो चोट लगी है। कहने के नहीं 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 हमें अपने बुत को नाकस चीज की कुर्बानी नहीं देनी, देखिए हम अल्लाह को देने में ऐसा नहीं सोचते। उन्होंने कहा ये तो जख्मी है, इसको नहीं देना, इसको छोड़ दो, कोई और लाओ जो बिल्कुल सही सालम हो। जब बादशाह को छोड़ा तो खुश हो गया, उसको समझ आ गया ओए अच्छा मुझे कहा था वजीर ने, उसमें ये खैर थी। फौरन वापस गया, वजीर को बुलाया जेल से, कहने लगा कि इधर आओ। कहने लगा तुमने जो कहा था ठीक कहा था, वाकया सुना दिया। कहने लगा बादशाह सलामत मैंने तो आपको पहले कह दिया था। कहने लगा अच्छा ये बता के ठीक है मेरे चोट लगी तो मेरी तो खैर हो गई, ये जो मैंने तुझे जेल में डाल दिया ये तेरे हक में कैसे बेहतर हुआ। कहने लगा ये तो उससे भी ज्यादा खैर हो गई। कहा वो कैसे हुआ। कहने का बादशाह सलामत अगर आप ठीक होते तो आप कभी मुझे छोड़ के बगैर ना जाते, आप मुझे जेल में ना डालते, साथ ही ले जाते। जो ही उन्होंने देखना था कि आपके चोट लगी हुई है उन्होंने मुझे पकड़ के डाल देना था बुत के आगे, तो आप मुझे छोड़ गए। बेहद कल खैर, मैं कहती हूँ जिसको ये पहेलियां बूझनी आ गई। बच्चे क्या खेलते हैं वो जो भूल भुलैया, उसका एक नाम होता है ना खासतौर पे, जी नहीं वो जो कागज पे लिख के इधर से निकलो उधर से जाओ गेम का एक खास नाम होता है, इधर छुपते हैं इधर निकलते हैं इधर जाते हैं ऐसे ऐसे। वल्लाही जिसको जिंदगी की ये हकीकतें समझ आ गई वो वक्का फकीर है, मुफ्ती आजम है वो, कि जिसको ये पता चल जाए कि बेयदी कल खैर, जिंदगी में पेश आने वाली हर चीज आपके रब के हाथ में है, जो होता है वो तो, और कुछ भी बुरा नहीं होता। आज से लिख लें अपनी जिंदगी में मेरे साथ जो हुआ वो ठीक हुआ, और अगर इसके वाक्यात कुरान से लिखने हैं तो सूरत कहफ के वो तीन वाक्यात लिख लें जो मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम के वाक्य में है, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, यकीनन तो हर चीज पे कादिर है। कितनी खूबियां इस एक आयत में अल्लाह सुब्हान तआला की, नंबर एक मालिक अल मुल्क, नंबर दो तूतिल मुल्क, नंबर तीन तंजिल मुल्क, नंबर चार तोइज़ु मन तशा, नंबर पांच तुज़िल्लु मन तशा, नंबर छह बियदिकल खैर, और नंबर सात इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। देखिए पूरी 1.5 लाइन की भी आयत नहीं है, सात खूबियां सिर्फ एक आयत में मेरे मालिक की। अब आठवीं खूबी, तू लिजुल लैला फिन नहार, तू रात को ले आता है दिन में पिरो कर, व तू लिजुल नहार फिन लैल, फिर दिन को निकाल आता है रात में से पिरो कर, 9 हो गई, व तू खरीजुल हय्य मिनल मैयती 10, और तू निकालता है जिंदा को मुर्दा से, और 11 व तू खरीजुल मैयता मिनल हय, और तू निकालता है मुर्दे को जिंदा से, और 12 वतरज़ुकु मन तशाउ बिगैरी हिसाब, और तू देता है जिसको चाहता है बेहिसाब। देखिए 2 लाइनों की 2 आयतें हैं तकरीबन, अल्लाह सुबहान तला की 12 खूबी हैं इस आयत के ऊपर, और बंदा क्या कह सकता है। इतना बड़ा मालिक, सारे खजानों का मालिक, सारी दौलतों का मालिक, उसको जो आप कहते हैं जो आप उससे बात कर जाते हैं आपको वो करने पे कादिर, तो आप मुझे बताइए कि क्या फिर अलैहिस्सल्लाहु भी काफ़ी नबदा, क्या वो एक अल्लाह फिर अपने बंदे को काफी नहीं है। आप अपने ऊपर लेकर सोचिए कि आपका एक ओनर हो, आपका एक बॉस हो, जिसमें ये 12 इंतहाई शदीद किस्म की खूबियां मौजूद हो, क्या आप उसको छोड़कर किसी और को अपना ओनर या बॉस बनाना चाहेंगे, राजिक बनाना चाहेंगे, आप उसके साथ लो लगाएंगे, आप उसकी खातिर मेहनत करेंगे, कुर्बानियां करेंगे, तो फिर आप बताइए कि हम अल्लाह के मामले में ये सब क्यों नहीं करते। جس کو وہ ڈیزرو کرتا ہے. شدت ہے, کل کہیے, یہ عقیدہ زبان سے کہنا پڑتا ہے, اور قول زبان سے کچھ کہنے کو کہتے ہیں, چاہے ایک لفظ میں بولیں چاہے جملے میں بولیں. جو بات ابھی ذہن میں ہو اور زبان تک نہ لائی گئی ہو نا, کبھی کبھی اسے بھی قول کہتے ہیں. اسی طرح عقیدے, خیال اور رائے کو بھی قول کہتے ہیں. گونگے لوگ بھی بولتے ہیں, ان کے عقیدے ان کے دلوں کے اندر ہوتے ہیں, ان کے حرکتوں سے پتہ چلتے ہیں. پھر اس کے بہت سارے مختلف معنی بھی ہوتے ہیں جو مجازی آتے ہیں. لیکن یہ جو لفظ ہے نا اللہمہ, اس کو اگر آپ دیکھیں نا تو اللہ سے علیہ اور ہمہ ہم کی ضمیر ہے آگے, وہی بات جو پیچھے آپ کو پہلے بھی بتا دی ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں مالک اور ملک, پیچھے ہم نے مالک یوم الدین میں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا. ملک جو ہوتا ہے نا, میم کی تینوں حرکتوں سے پڑھا جاتا ہے. لکھیں ذرا, آپ کو مزہ آئے گا. زبر ملک, میم کی زیر ملک, اور میم کی پیش ملک. تینوں حرکتوں کے ساتھ پڑھیں گے نا تو قوت رکھنے کے معنی آتے ہیں اس میں. کسی چیز پہ قادر ہونا, کسی چیز کا متولی بن جانا, اختیار اور ارادہ, جس کو آپ اتھارٹی کہتے ہیں اپنی زبان میں, بنیاد, محکم, وہ سہارا جس پر کوئی چیز قائم ہو. پانی اور غذا کو اور دیگر اسباب کو بھی ملک کہا جاتا ہے. ملک, یہ انگلش والا ملک نہیں ہے. پانی کو ملک کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ صحراؤں میں بھٹکتے ہوئے پانی نہ ہو تو زندگی چلی جاتی ہے, اور پانی کا ہونا زندگی کا ایک سبب بن جاتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس کے اور مختلف ہیں, لیکن میں آپ کو صرف موٹے موٹے لفظوں پہ لے کے جا رہی ہوں. تنزیہ کا لفظ کو دیکھ لیں, نزع, کسی چیز کو اس کی جگہ سے اکھیڑ کر نکالنا, پھر الگ کر دینا. روح پہلے جسم سے اکھڑتی ہے پھر نکلتی ہے. سورۃ اعراف میں ہم جنت سے آدم اور حوا کا جو لباس اتارا گیا تھا اس کے لیے بھی یہی لفظ پڑھیں گے, ینزعنہما لباسہما. شیطان نے کھینچ کے اتار دیا آدم اور حوا سے ان کا لباس. اسی طرح سورۃ معارج میں ہم پڑھیں گے نزات للشوا, چہرے کی کھال کو ادھیڑنے والی آگ ہے, یہ زور سے کھینچے گی. والنازیاتی غرقا, سورۃ نازیات میں کھینچنے والے, یعنی جب اللہ لیتا ہے تو پھر کیسے لیتا ہے. آپ نے کبھی کسی کا راتوں رات تختہ الٹتے دیکھا؟ کل تک شاہ تھے تو آج گدا بن گئے, یا تخت پہ تھے تو یا تختے پہ چڑھ گئے. یہ ساری دنیا کی جو کہانیاں چل رہی ہیں نا, یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں. العزیز تو عزو, عین زا زا سے ہے, قوت, غلبہ, رفت. عزہ اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان کو مغلوب ہونے سے بچاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا فلاں نے میری عزت کی, تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میں اس کے آگے دبا نہیں. اصل میں اس میں شدت کے معنی کیسے پائے جاتے ہیں؟ کیونکہ اپنے اندر ایسی سختی پیدا ہو جانا کہ کسی کے دبائے سے دب نہ جائے. اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا العزیز, وہ اسی سے ہے, اور بڑا شدید نام ہے. اللہ تعالیٰ عزت کیسے دیتا ہے, آپ اور میں اپنے اوپر لے کر سوچتے ہیں. لیکن یہ جو لفظ عزیز ہے, اگر اس کی اصل آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا, تو آپ کو باقی باتیں بھی سمجھ آئیں گی. وہ عقاب ہوتا ہے نا, ایگل جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں, اس کو بھی عرب لوگ العزیزتو کہتے تھے, کیونکہ بہت طاقتور ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے جب گوشت سخت رہ جاتا ہے, پکتا نہیں, زیادہ گلتا نہیں, تو تعزز اللحم کہتے ہیں. بس جب اونٹنی کے جو تھن ہوتے ہیں نا, اس کے سوراخ تنگ ہو جاتے ہیں, پھر دودھ نہیں نکلتا یا مشکل سے نکلتا ہے. اس وقت عرب لوگ بولا کرتے تھے تعززت الناقتو, سخت زمین جس پر بارش ہونے سے ریت یا مٹی جم جائے اور سخت ہو جائے, اس کو المعزوزتن کہتے ہیں. اتنا ہی کافی ہے, لیکن آپ ذرا عزت اور کے لفظ کو محسوس تو کیجئے کہ جب کسی کے اوپر عزت ملتی ہے اللہ کی طرف سے, تو وہ ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے. اور یہ جو وتذلو کا لفظ ہے نا, زال لام لام سے, متی ہونے کو کہتے ہیں, کسی کی سختی اور منہ زوری کا ٹوٹ جانا. ظاہری بات ہے جب ذلیل کوئی ہوتا ہے تو پھر وہ جھک ہی جاتا ہے نا, پھر اس کی طبیعت کی سختی کم ہو جاتی ہے, وہ مغلوب ہو جاتا ہے, دباؤ اور جبر میں آ جاتا ہے. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کی, تو اب میں آپ سے اور آپ مجھ سے پوچھئے کہ دنیا میں اللہ کے حکم سے کن کاموں کے کرنے کی وجہ سے عزت ملتی ہے؟ آپ کہیں گے اچھے کپڑے پہننے سے, अच्छे घर में रहने से और अच्छा फोन हाथ में पकड़ने से। सच बताइए, हम अपनी सोसाइटी पे जब नजर डालें तो क्या हमें ऐसा नहीं महसूस होता? इज्जत और बेइज्जती के मेयार क्या है? आम बोलते हैं इज्जत का मसला है, छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं कपड़े चेंज करो, मेहमान क्या कहेंगे, इंसल्ट हो जाएगी आपकी, ये क्या पहन के आप बाहर जा रहे हैं, पुरानी जूती पहने, फटी हुई जराब पहने, अरे बेइज्जती हो जाएगी। यहां तो कहानी कुछ और है, वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। ये इज्जत और जिल्लत मिलती है इंसान को सबसे पहले ईमान से। इन सब के रेफरेंसेस मौजूद है जो मैं बोझल होने के डर से नहीं देती। दुनिया में इज्जत पाने के लिए सबसे पहली चीज ईमान, फिर तकवा। सूरत हुजरात में इसकी दलील मौजूद है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाही अतकाकुम। तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। फिर इज्जत मिलती है सच से। सूरत मायदा के आखिर में आता है कि क्यामत के दिन सच्चे लोगों को उनका सच फायदा देगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह ताला की तरफ से इज्जत मिलती है इंसान को इखलास की वजह से। जितना आपके अंदर इखलास ज्यादा होगा उतना अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा। फिर इस इज्जत का एक सबब है मेहनत। मेहनती की सब इज्जत करते हैं, आप दुनिया के किसी फील्ड में जाके देख लें, किसान है या तरखान है या किसी जगह ऑफिस में बैठ के दिल से काम करने वाले, आप इसकी इज्जत करेंगे, आप कहेंगे ही इज वेरी डेडिकेटेड पर्सन। क्या कहते हैं कि मेहनत को कोई आंच नहीं, जो काम भी इंसान को उससे मिल जाता है। फिर इसी तरह से दुनिया में भी इज्जत मिलती है इंसान को इस्तकामत की वजह से। कोई चीज घर लाए और टूट जाए तो आप अगली दफा लाएंगे? वो कीमती चीज हो या अच्छी ड्यूरेबल चीज की इज्जत होती है। फिर इसी तरह से इज्जत किसको मिलती है? जो डिटर्मिंड होता है, मकसद का धनी, आप कह लें कि अपनी धुन का पक्का। फिर इसी तरह से अल्लाह की इताअत से इज्जत मिलती है। अल्लाह का डर दुनिया में इज्जत दिलवाता है। अब इसका ऑपोजिट लिखिए, जिल्लत किसको मिलती है? असबाबे जिल्लत में सबसे पहला सबब कुफर, शिर्क, कबीरा गुना, फिर मासियत, फिर सगीरा गुना। फिर जो इज्जत मांगे उसको भी जिल्लत मिलती है, याद रखिएगा। तकब्बुर से जिल्लत मिलती है, शैतान ने तकब्बुर ही तो किया था ना, खैरो मिन्हु। फिर इसी तरह जिल्लत मिलती है बेमकसद होने से, और जिल्लत मिलती है झूठ बोलने से, और जिल्लत मिलती है दीन से दूरी से, इख्तलाफात से जिल्लत मिलती है, तफरकेबाजी से जिल्लत मिलती है, दुश्मनों का साथ देने से जिल्लत मिलती है। आप कहेंगे नहीं, वक्ती तौर पे तो फायदा होता है। याद रखिए कि असल चीज हमेशा की है। अब आप इस आयत पे थोड़ा सा अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ें। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा। आपको पता है कि इस आयत के साथ एक खास वाक्या आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी थी, पीछे भी आपको बताया कि अल्लाह मेरी उम्मत को रूम और फारस की बादशाहत मिल जाए, उस पे उस आयत के बाद ये अगली आयत भी नाजिल हुई। लेकिन एक वाक्या पेश आया था गजवे खंदक के दौरान। जब खंदक खोदी जा रही थी तो बीच में कुछ पत्थर आ गए और सहाबा से बावजूद कोशिश के वो नहीं टूट रहे। नबी सल्लम को आके खबर दी गई तो आपने कहा कि अच्छा पीछे हो जाओ। आपने खुदाल मारा तो एक पत्थर का टुकड़ा गिरा। आपने कहा मुझे रूम की चाबियां दिखाई गई। फिर दूसरा मारा तो फारस की, और उसके बाद तीसरा मारा, पत्थर टूट गया। यदि पेट पे पत्थर, पांव गारे में, कीचड़, खौफ, हिरास, जुलजिलो जिलजालन शदीदा वैजल खुलूब लदल हनाजिर, सूरह अहज़ाब में पढ़ लीजिए इस जंग के किस्से। और ख्वाब क्या देखे जा रहे हैं कि रूम और फारस को फतह करेंगे। उस वक्त मुनाफिकों ने मजाक उड़ाया था कि आज तो कजाए हाजत के लिए जाने की इजाजत नहीं है तुम लोगों को, और ख्वाब तुम देख रहे हो कैसरो किसरा के बादशाहों के। उस पे आयतें उतरी थी, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की। एक और इस दुआ का बड़ा खूबसूरत एंगल है जो मेरा ख्याल है कि अभी तक आपने उस पर गौर नहीं किया। तिल कलैया मनोदा विलोहा वैतन्नास। इस दुनिया में तब्दीलियां दिन रात आती हैं। देखिए ना, तूली जो लैला फिर नहार व तूली जो नहार फिर लई, इतनी बड़ी तब्दीलियां पैदा करना, रात को दिन में, दिन को रात में, कभी रातें लंबी कभी दिन छोटे, कभी इसका ऑपोजिट, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कितनी बड़ी बात है। तो इससे क्या पता चलता है कि आपकी जिंदगी में अगर इस वक्त गमों की रात है, डोंट वरी, खुशियों की सुबह भी आएगी। डोंट बी डिप्रेस्ड, डोंट बी सैड, उदास ना हो, परेशान ना हो, लगे रहो अल्लाह के रस्तों में। और ऑपोजिट भी है, आज अगर खुशी की कोई हवा चल गई तुम्हारी जिंदगी में, अल्लाह ने बच्चा दे दिया, बेटी का रिश्ता हो गया, शौहर की प्रमोशन हो गई, तो अकड़ना नहीं, अभी तुम्हें अपने रब से बहुत सारे काम है, अभी उसने तुम्हें बहुत कुछ देना है, तुम्हें अभी बड़ी उसकी जरूरत है। तुम आज अगर इस खुशी में पड़कर उस रब से टूटे तो इतनी दूर फेंक के मारेगा कि तुम्हारा निशान भी ना मिलेगा। और अफसोस की बात है, ये दो मिसालें जो दी है ना, इनमें से जो पहली मिसाल है ना, दुख गम, मुसलमान डिप्रेशन में कम ही जाता है, ये काफिर का मामला लिखे, ये मैं आपको बहुत बड़ी बात लिखाने लगी अभी। तकलीफों और गमों बीमारियों परेशानियों में काफिर सबसे पहले डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि नो होप। मैं अपने दिल से भी सोचती हूँ कि जिनका आखरत पे ईमान नहीं है, जैसे नॉन मुस्लिम नहीं मानते कुछ कि हम आखरत में जाएंगे, मैं सोचती हूँ इनको अपने मरने वालों पे सब्र कैसे आता है, ये चेहरा अब कभी नहीं देखना, इन हाथों का लम्स अब कभी नहीं मिलना, तभी तो शायद इनका दफनाने को दिल ही नहीं करता। कई कई दिन, 15-20-20 दिन तक इनकी रसूमात चलती है, फिर कहीं जाकर दफनाते हैं। और कई कल्चर ऐसे हैं, आपको पता है कि मैयत को ऐसे दफन करते हैं कि उसका चेहरा शीशे में रखा रहता है, वो खनूत कर देते हैं, वो ऐसे ही रहेगा। गम के वक्त काफिर ज्यादा उम्मीद छोड़ देता है, हद तक कि देखिए ना, बड़ी से बड़ी मौत भी आ गई तो मोमिन कहता है कोई बात नहीं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बरक्स जो मुश्किल पर्चा है ना जिंदगी का, और मैं अपने ऊपर लेके कहती हूँ, सबसे ज्यादा लोग जिस पर्चे में फेल होंगे ना क्यामत के दिन, वो खुशियों की सुबह का पर्चा है। नेमतों के पर्चों में ज्यादा मारे जाएंगे मुसीबतों गमों दुखों की वजह से। तकलीफ आती ना, हम ऐसे अधमुए और वो भीगी मुर्गी के बच्चे की तरह और भीगी बिल्ली बने बैठे होते हैं, हाय अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह माफ कर दे अल्लाह, ये आवाज भी नहीं पूरी निकलती। कभी आप बच्चों को देखा करें जिसे रिजल्ट निकलना होता, उस दिन जाए नमाज पे बैठे वो मासूम सूरतें क्या दुआएं मांग रही होती हैं, दादो आप भी दुआ करना और मामा आप भी दुआ करना, बाबा आप भी करना, सिंकनाइज हो जाती है फितरत के साथ इंसान की तबीयत। बट खुशी कोई हमसा हो तो सामने तो आए, हवाओं में उड़ने लगते हैं लोग, पांव ही नहीं जमीन पे लगते, ये खुशी जो मुझे मिली। और वो खुशी भी कोई बहुत सारी लंबी चौड़ी नहीं होती, कभी आप लोगों को बहुत लंबी फरारी गाड़ी में बैठा हुआ उड़ाता तो देखें उस गाड़ी को, ऐसे लगता है मेरी गाड़ी दुनिया में, बाकियों की तो गाड़ी गाड़ी नहीं है। नहीं, अभी इस गाड़ी के बड़े खर्चे हैं, अभी इस गाड़ी ने आपसे बहुत कुछ मांगना है, अभी आपको अल्लाह की बड़ी जरूरत है। वो एक शेर है, मुझे आता नहीं है, लेकिन मेरा मौलाना जफर का है कुछ ऐसा कि जफर आदमी उसको ना कहिएगा, वो आदमी नहीं है कि जिसको दुख में खुदा याद ना रहे, जिसको सुख में खुदा याद ना रहे। ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है, इंसान आपे से बाहर होने लगता है। और याद रखिए, हर इंसान का एक वस्फ होता है। पहले दौर में इंसानों को जो सबक था, या पहला दौर कह लीजिए, असलाफ या फिर सहाबा या फिर नबी सल्लम, एक ही बात है सबका, वो अंदर रखते थे खुशियों को, खुशी ज्यादा होती थी नजर कम आती थी, अंदर खुश थे। और अब क्या हाल हो गया, अंदर फोकले बाहर है। यानी ये इसी ट्रिप में मुझे कई नए नए इंकशाफात भी हुए, तो एक सिस्टर थी तो बताने लगी, कहती कि पहले दौर में खाना आता था तो कहते थे जल्दी जल्दी करो, गरम गरम खा ले, तो अब क्या, ठहरो ठहरो पिक्चर बना ले। तो वो एक माँ सुनाने लगी कि मैंने कुछ ऐसा हुआ, केक था या कोई ऐसी बता रही थी, कोई फैंसी सी डिश, स्वीट डिश बनाई होगी कुछ, तो कहती मैंने रखी तो एकदम मेरा पोता आ गया, तो मैंने ना जैसे बे सोचे में पोते से मेरा यंग टीन एज के करीब, तो कहती कि मैं समझी कि ये अब इसमें से लेने लगा है, तो मैंने उसको ना जरा सा सख्ती से, अरे नहीं ये मैंने लेके जाना है कहीं या कुछ है, कहता है दादो मैं तो तस्वीर बनाने लगा था। ये अंदर नहीं रहती खुशी, एक्सपोजर ज्यादा है। फिर एक सिस्टर थी कि हम सारी बातें कर रहे थे तो उसकी कुछ झलकियां, तो एक सिस्टर कहने लगी कि पहले होता था कि जब कहीं तैयार होके जा रहे जल्दी करो गाड़ी में बैठो बच्चे हैं वो है तो आप दरवाजे से निकलने से पहले पहले अपनी सेल्फी से तस्वीर ले लूँ, गाड़ी से निकलना तो पता नहीं क्या हाल हो लिया होना है। मैं इस बात को कह रही हूँ ना तो मुझे मिसाल याद आ रही है, वो शायद हम जब छोटे थे भी होते होंगे, गैसी गुब्बारा एक होता था और एक दूसरा गुब्बारा होता था। गैसी क्या होता है, जिसमें आप गैस भर दें ना तो वो एक हाथ से छुटता था तो ऊपर छत के साथ चिपक जाता था, और हम छोटे होते थे वो ऊपर चढ़ा जाता था। फिर या किसी को बुलाओ या डंडी सोटी लाओ उसके साथ उसका धागा लपेटो फिर बड़ी टेक्निक से उतारो। और एक हल्का सा एक हल्की सुई की नोक उस पर दबेगी ना फट जाता है। कुछ लोगों का आज खुशी में ये हाल होता, वो गुब्बारों की तरह ऊपर छतों पे लग जाते हैं, हमसे कोई उम्मीद ना रखे। और एक हल्की सी चुभन पड़ती है जिंदगी में तो वो नीचे गिरता है। कंटेन करें, कंटेन करने का लफ्ज याद रख लें, जो अल्लाह की नेमतों को कंटेन करता है ना वो झुकता है, भारी होगा ना अंदर जा रही है नेमत, सर सजदे में जाएगा, और जो कंटेन नहीं कर पा रहा वो तो बस एक्सपोज कर रहा है वो उड़ेगा, और उड़ने वाला है तो फिर नीचे गिरता ही है, क्योंकि अल्लाह ने बता दिया कि वतो इज्जो मन तशा वतो जिल्लो मन तशा। अगर इस दुआ को मैं और आप समझ जाए ना तो यकीन करें हम न्यूट्रल ठंडे रिलैक्स्ड स्माइली और पता नहीं क्या कुछ हो जाए। और दुआ का तरीका भी सिखा दिया है, इन लफ्जों में दुआ मांगे। और ये जो मालिकल मुल्क, इसमें क्या कुछ है, मुल्क में नबुवत भी थी नबियों के लिए और आज के दौर में इसके अंदर हिकमत भी है, और क्या कुछ है, कुव्वत का इजहार है, अल्लाह के तसरुफ का इजहार है। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह का मालिकुल मुल्क होना इंसान के अंदर क्या तब्दीली डालता है, क्या शौर मिलता है। नंबर एक कि मैं मालिक नहीं हूं, सबसे पहले अपने नामों के साथ ये लफ्ज निकाल दीजिए, मालिक मकान ओनर, मैं मालिक मकान नहीं हूं, बस आपसे पहले ये घर अल्लाह ने मुझे दे दिया, रह आप रहे हैं, ये फीलिंग हो। और अगर आप मालिक मकान बन गए किसी के आगे आते हैं तो फिर अगला बंदा तो आपको जरूर ही किराएदार नजर आएगा और या कुछ और ही दिखेगा। तो अल्लाह का मालिकुल मुल्क होना एहसास दिलाता है कि असली मालिक वो है, मालिकुल मुल्क। अब आप देखिए ना मालिकुल मुल्क से मुराद क्या है, तुम भी मालिक हो ना घर के लेकिन तुम्हारा मालिक रब है। दूसरी बात इससे क्या पता चलती है कि पाबंदियों और शर्तों का एहसास होता है। इंसान को जो मलकियत मिली वो आर्जी है, ये पता चलता है, ये अल्लाह की अता है और कुछ शरायत हैं इस पे इंसान को ये मलकियत देने की, छीन भी सकता है। फिर अगली चीज पता चलती है इस बात से कि इंसान को कोई भी नेमत मिले उसको अल्लाह सुबहाना ताला की गाइडलाइन के मुताबिक इस्तेमाल करना है। देखिए ना मालिक मकान आपको घर दे भी दे, मिसाल है, या आप किसी की गाड़ी बोरो करके दो दिन के लिए ले जाएं तो चार छह बातें जरूर कहेगा, इसका इंजन बंद रखिएगा, इसको ये ना करिएगा, इसको रात को दरवाजों के अंदर रखिएगा, घर है तो इसके अंदर ये ना करिए, वो करते हैं ना। तो दुनिया में फिर अल्लाह ने मेरे आपके ऊपर जो पाबंदियां लगाई हैं उसकी वजह क्या है कि मालिकुल मुल्क ही कैन डू इट, और हम मजबूर हैं, हमें तो अल्लाह के इस तसर्रुफ को मानना भी है। और फिर याद रखिए एक और बात भी इसमें, और वो कह के दुनिया में जिसको जो मिला है वो एक वक्त आएगा चला जाएगा, या चीज चली जाती है या बंदा चला जाता है, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। सूरत नूर आयत 55 में आता है वादल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वामिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दी कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह ने इनके साथ वादा किया है जो ईमान लाए और नेक अमल करे कि वो इनको जमीन में जरूर जानशीन बनाएगा जैसे कि पहले लोगों को बना चुका। तो अल्लाह का वादा फिर क्या कि तुम ईमान लाओ तो मैं तुम्हारे साथ ये मामला करूंगा। इसी तरह सूरह अनफाल आयत 45-46 में भी मुसलमानों को यही सबक दिया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़ियतन फ़स्बुतू वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। तवील आयत है जिसका खुलासा क्या है कि साबित कदम रहो, अल्लाह को कसरत से याद रखोगे तो फला पाओगे, और अगर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, आपस में झगड़ा ना करो वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। फिर एक बात करके और चलते हैं। अल्लाह ताला के दो नाम याद रखिए, इसी के अंदर से आपको नाम तो और बहुत सारे मिलेंगे। तो इज्जू से कौन सा नाम है? अल मुईज, मुईज नाम है अल्लाह ताला का। और जलील करने से अल मुज़िल, ये अल्लाह का नाम है। इसकी तफसीर अगर आप सुने, छोटी सी है, 10-15 मिनट का होगा, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ाया था तो मुझे वाकई उसी ने एहसास हुआ था कि हम इज्जतों के मालिक बने होते हैं। एक और एंगल से इसको समझ लें, आज क्या लोग वाकई मानते हैं कि इज्जत का मालिक अल्लाह है? हम तो इज्जत इंसानों के हाथों में मांगते हैं। सास के पास इज्जत है, और ससुर के पास इज्जत है, और आका के पास इज्जत है, और मुल्कों की बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं दुनिया में उनके पास इज्जत है। तो ऐसा नहीं है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अपना ही मुख्ताज करे। इस दुआ के साथ एक और दुआ भी आती है, अगर आप में से किसी के पास, मेरा तो ख्याल है सभी के पास होगा, हसनुल बयान। तो अगर आप उसको खोल के पढ़ेंगे इन्हीं आयतों की तफसीर में, तो एक रिवायत पढ़ के सुना देती हूँ। हजरत माज ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ऊपर कर्ज की शिकायत की। बहुत सारे लोग हैं ना, उनको कर्ज उनके ऊपर चढ़ा होता है। तो आपने फरमाया कि तुम आयत कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क ही पढ़ो, यही जो हम पढ़ रहे हैं पूरी आयत। फिर ये दुआ करो, रहमान अद्दुनिया वल आखिरती व रहीमहुमा तुती मन तशाउ मिनहुमा व तमनउ मन तशाउ ए रहमनी रहमतन तुगनीनी बिहा अन रहमती मन सिवाक अल्लाहुम्मा अग्निनी मिन अल फक्री वक्दी अन निद्दईन। एक और रिवायत में था कि ऐसी दुआ कि तुम पर बहुत पहाड़ जितना कर्ज भी हो तो अल्लाह ताला इसकी अदायगी का तुम्हारे लिए इंतजाम फरमाएगा। चलिए अपने आप को अल्लाह ताला के साथ जोड़िए, और इस वक्त सारी चीजों से बेनियाज हो, और मोहब्बत से कहें कि अल्लाह आई लव यू, मुझे तेरे सिवा किसी की जरूरत नहीं है। और आप देखेंगे कि किसी की इतनी खूबियां मालूम हो जाए तो वैसे ही दिल में बड़ाई पड़ती है। इसके बरक्स हम किन के पीछे फिर रहे होते हैं? इंसानों का रवैया देखें, और खासतौर पे हमारा कल्चर, हम तो लोगों के गुलाम हो गए। हम किसी की जुल्फों के असीर हो जाते हैं, किसी को दिल दे के आ जाते हैं, किसी पे हमारी निगाहें लगी होती हैं, किसी के खाने के हम गुलाम होते हैं। हम सब में वो खूबियां बांट के लेते हैं जो एक अल्लाह से मिलती हैं।
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب